भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान की व्याख्या, और हम पिछले 6 बुधवारों से इस अध्याय का ये महत्वपूर्ण श्लोक इस पर चर्चा कर रहे हैं। और आज आपको निश्चित रूप से बता दें कि अंतिम भाग है इस श्लोक का। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री भगवान ने कहा, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। इस अध्याय में भगवान ने इस श्लोक के पश्चात अन्य श्लोकों में भी उनके अवतार लेने का कारण बताया है, परंतु ये श्लोक जिसके ऊपर हम पिछले 6 बुधवारों से रोशनी डाल रहे हैं, आज थोड़ी रोशनी कम है, फिर भी प्रयास करेंगे पूरी रोशनी डालने का, तो ये विशेष है क्योंकि यहां पर भगवान धर्म और अधर्म इसकी व्याख्या करते हुए और धर्म और अधर्म के संदर्भ में भगवान का अवतरण इसकी व्याख्या कर रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण अन्य श्लोकों से इसलिए भी है कि हम लोग जो इस भौतिक संसार में, विशेष रूप से कलयुग में, धर्म और अधर्म के बीच में निर्णय करने में इतने ज्यादा अक्षम हैं, तो इसलिए ये श्लोक जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से हम भारतीयों को आज की स्थिति में 2014 अधिकांश हम भारत में रहने वाले एक ऐसे दुविधा में हैं, एक ऐसे असमंजस में हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और अक्सर अधर्म को धर्म मान लिया जाता है और धर्म को अधर्म मान लिया जाता है। तो जब ऐसी दुविधा मन स्थिति में हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं, तो ऐसे श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है समझना, इसलिए हमने इतना समय इस श्लोक के ऊपर दिया है, क्योंकि भगवान ने बहुत सोच समझकर इस एक श्लोक की रचना उस प्रकार से की। एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक वाक्य, उसके पीछे ऐसा गुह्य रहस्य भगवान ने छिपाकर हमें दिया है। तो एक हम रिकैप लेंगे। पिछले बुधवार हमने ग्लानि एवं अभ्युत्थानम इन दो शब्दों पर चर्चा की थी। तो भगवान ने ग्लानि और अभ्युत्थानम ये धर्म और अधर्म के संदर्भ में इस्तेमाल किए हैं। तो कलयुग में हम देखते हैं विशेष रूप से कि धर्म की ग्लानि अर्थात धर्म का अपमान और उसके साथ साथ अधर्म अभ्युत्थानम अधर्म का सम्मान। तो कलयुग की विशेषता हमने पिछली बार देखी। कलयुग इज स्पेशली कैटेगराइज्ड विद दीज टू फीचर्स। कलयुग इज वेयर सिन इज ग्लैमराइज्ड, स्पिरिचुअलिटी इज रिडिक्यूल्ड। अब देखिए भगवान ने संस्कृत भाषा में इसी चीज को कहा है। जब हम अंग्रेजी में इसको समझने की कोशिश करते हैं तो हां हमको दिखता है कि पेपर उठाओ पढ़ो, टीवी ऑन करो, ये सब जगह पर क्या देखने मिल रहा है, ये दो चीजें देखने मिल रही है। सिन इज ग्लैमराइज्ड, स्पिरिचुअलिटी इज रिडिक्यूल्ड। और पिछली बार हमने कुछ ऐसे ग्लैमराइज्ड सिंस जो हैं उनके विषय में चर्चा की थी। लिव इन रिलेशनशिप्स, अबॉर्शंस, मीट ईटिंग, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, जैसे मुझे हमारे एक भक्त हाल ही में विदेश गए तो बता रहे थे कि बंबई का एयरपोर्ट अब इतना वेस्टर्नाइज्ड हो गया, समझ में नहीं आता कि आप बॉम्बे के एयरपोर्ट में हैं या किसी फॉरेन कंट्री के एयरपोर्ट में हैं। और जब कोई आम आदमी जाकर ऐसे एयरपोर्ट को देखता है तो हमारे मन में क्या ख्याल आता है, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, है ना, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग। तो हम भी जब विदेश यात्रा करते हैं और जब लौटते हैं तो यहां बॉम्बे के एयरपोर्ट में आप लोग ने भी अगर देखा है तो सबसे पहले आप भारत में एंट्री कर रहे हो, गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे को कहा जाता है, और दारू की पेशकश, अलग अलग प्रकार के दारू, वहां से आपको वहीं से गुजर कर जाना पड़ता है और कोई रास्ता उन्होंने निकाला नहीं कि जहां से कोई दूसरे रास्ते से भी आप आपका जो भी क्लियरेंस कराकर बैगेज क्लेम कराकर बाहर निकल पाए, एक ही रास्ता वो बनाकर रखते हैं। जितने अलग अलग प्रकार के नशा है, दारू है, सिगरेट है, वो सब से गुजर के हो। सो दिस इज द वेलकम विच इंडिया इज नाउडेज गिविंग, अनफॉर्चुनेटली। और मैं आश्चर्यचकित रह गया, बहुत साल पहले मैं बैंकॉक गया था, बैंकॉक से प्लेन पकड़कर हम बर्मा गए थे, वहां पर भागवत सप्ताह थी। तो बैंकॉक के एयरपोर्ट पर, अब देखो थाईलैंड, बैंकॉक थाईलैंड का कैपिटल है, थाईलैंड आपने सुना होगा किस लिए फेमस है, ये सारी चीजों के लिए फेमस है थाईलैंड। परंतु बैंकॉक जो कैपिटल है थाईलैंड का, बैंकॉक के एयरपोर्ट पर समुद्र मंथन का इतना बड़ा, ये अपना जो टेंपल हॉल है इससे भी बड़ा समुद्र मंथन का डायरमा वहां पर बीचों बीच, एयरपोर्ट के बीचों बीच उन्होंने डिपिक्ट किया। तो मुझे बहुत इंप्रेसिव भी लगा और मुझे शर्म भी आई कि जो हमारे एयरपोर्ट पर होना चाहिए, भारत के एयरपोर्ट्स पर होना चाहिए, वो थाईलैंड का जो कैपिटल है बैंकॉक वहां के एयरपोर्ट पर है। अच्छी बात है वहां के एयरपोर्ट पर है, परंतु हमको कम से कम उनसे तो कुछ सीखें। तो हमको इसमें क्या लगता है कि यहां ये ग्लैमर है इंडिया का आजकल, कि इसकी जो पेशकश की जा रही है इतने ग्लैमरस तरीके से, तो ये है अधर्मस्य अभ्युत्थानम। अधर्म का सम्मान. स्पिरिचुअलिटी इज रिडिक्यूल्ड. स्पिरिचुअल एजुकेशन इन स्कूल्स. आजकल हमारे शिक्षा प्रणाली में हम अगर बच्चों को पूछें कि भाई हमारे शास्त्र, प्रमुख शास्त्र कौन से हैं, तो कम से कम ये शब्द शास्त्र ये तो पता होना चाहिए. बहुत से बच्चों को तो शास्त्र, शास्त्र का अर्थ क्या है. जैसे वो विनोद में कहते हैं, एक स्कूल में एजुकेशन मिनिस्टर गए, ऐसे सरप्राइज विजिट उन्होंने दिया चेक करने के लिए कि हमारे भारतीय स्कूल में स्पिरिचुअल एजुकेशन कितना दिया जा रहा है. तो एजुकेशन मिनिस्टर पहुंच गए एक स्कूल में और अचानक स्कूल में पहुंच गए, क्लास चल रही थी तो सब लोग खड़े हुए. गुड मॉर्निंग सर, जो टीचर सिखा रहे थे उन्होंने वेलकम किया, एजुकेशन मिनिस्टर आ गए. तो पूरी क्लास के ओर देखते हुए मिनिस्टर साहब पूछते हैं, तो स्पिरिचुअल एजुकेशन कितना दिया जा रहा है आप लोगों को. तो सारी क्लास के, बहुत बहुत दिया जा रहा है सर. तो मिनिस्टर साहब ने पूछा, बताओ फिर शिव धनुष किसने तोड़ा, शिव धनुष किसने तोड़ा बताओ. नहीं, आपको नहीं पूछ रहे हैं, मैं हम शायद आप अभी भी हैं. तो कोई जवाब नहीं दे रहा है, शिव धनुष किसने तोड़ा, कोई जवाब नहीं दे रहा है. तो एक लड़के को खड़ा किया, बताओ शिव धनुष किसने तोड़ा. उन्होंने कहा, सर मैंने तो नहीं तोड़ा. तो वो एजुकेशन मिनिस्टर इतना ज्यादा गुस्से में आश्चर्यचकित हुआ और टीचर की ओर देखा कि ये तुम लोग सिखा रहे हो. टीचर की ओर देखा तो टीचर भी घबराया हुआ. तो टीचर ने कहा, मिनिस्टर साहब वो अच्छा लड़का है, वो नहीं तोड़ेगा. अब तो रहा नहीं गया, हमारे मिनिस्टर साहब से रहा नहीं गया, वो गए प्रिंसिपल के पास और प्रिंसिपल को जाकर सब कुछ बताया कि ये हो रहा है आपके क्लास में, मैं जाकर आया हूं, क्या क्या हुआ बताया. ऐसे प्रिंसिपल जब सुने, बोले मिनिस्टर साहब जो भी हुआ हो, जिसने भी तोड़ा हो, हम पैसा दे देंगे. तो आजकल स्थिति है ऐसी, आजकल स्थिति है. एक टीचर ने पूछा, सच्चा देशभक्त कौन है, भारत का सच्चा देशभक्त कौन है. एक विद्यार्थी कहता है, जो इंग्लिश टॉयलेट के ऊपर इंडियन स्टाइल में बैठे वो सच्चा देशभक्त. तो हम यहां पर जो चर्चा कर रहे हैं कि ये सारे चीजें, सिंपल लिविंग बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर, स्पिरिचुअल एजुकेशन, सेंस कंट्रोल, पब्लिकली परफॉर्मिंग स्पिरिचुअलिटी. शर्म आती है लोगों को आजकल कि अध्यात्म का पालन हम खुल के नहीं कर पा रहे, और खुल के करें तो शर्म आती है. और फिर पापकृत्य खुल के जब होता है तब उसको सराहा जाता है. सम डिसेप्टिव टर्मिनोलॉजीज वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम. एबॉर्शन इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. प्रोस्टिट्यूट्स आर कॉल्ड कमर्शियल सेक्स वर्कर्स. पब्लिक शेमलेसनेस इज कॉल्ड पीडीए. उसको भी शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं आजकल न्यूज़पेपर में, पूरा नहीं बोलना चाहते. पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन. सम ऑफ द मोस्ट वल्गर ऑब्सीन मूवीज, दे आर कॉल्ड बोल्ड मूवीज. And those vulgar actors are called bold actors. And therefore they are called bold and beautiful. तो अभ्युत्थानम अर्थात अधर्म के सम्मान की शुरुआत कैसे होती है. पिछली बार हमने ये श्रृंखला ली थी, टेम्पटेशन लीड्स टू सिन, सिन रिपीटेडली परफॉर्म्ड वन मेक्स कॉम्प्रोमाइज विद सिन, देन स्टार्ट्स जस्टिफाइंग सिन, एंड द हाइट ऑफ इट वन मेक्स अ फिलोसफी आउट ऑफ सिनफुल लाइफ. कि भाई एक संप्रदाय शुरू कर देता है व्यक्ति कि कैसे ये जो पाप कार्य है यही आपके प्रगति के लिए आवश्यक है. या कई बार तो लोग यहां तक बोल देते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है, इतनी भी हिम्मत लोगों की हो जाती. तो इस प्रकार से अभ्युत्थानम भगवान जो आज के श्लोक में बोल रहे हैं कि पाप अधर्म का सम्मान, उसकी शुरुआत इस प्रकार से होती है. फिर हमने पिछली बार ये बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम लिया था जो कि व्यक्ति को क्या बना देता है, धीरे 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 छोटी छोटी मात्रा में लोग पाप करना शुरू करते हैं या पाप के संपर्क में भी आना शुरू करते हैं. आप विश्वास नहीं करेंगे, न्यूज़पेपर में जो इतने पाप कृत्य हम पढ़ते रहते हैं और नियमित रूप से पढ़ने से होता क्या है, ये जो बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम है वो होता रहता है. क्या होता है कि धीरे धीरे वो उसकी आंच, वो पाप की आंच इतनी बढ़ती रहती है कि अब एक मैं आपको उदाहरण अगर दूं, जैसे कि पिछले साल दिल्ली में वो बलात्कार हुआ उस महिला का, बहुत ही नृशंस तरीके से बलात्कार हुआ और दुर्भाग्य से वो महिला, उन्होंने दम तोड़ दिया. अब देखिए पूरे पूरे भारत में वो समाचार, सब जगह उसकी चर्चा, पेपरों में सब जगह. अब हुआ क्या पता उसके पश्चात कि वो एक किस्सा हुआ, फिर अभी बंबई में क्या हो शक्ति मिल्स, वहां पर एक किस्सा हुआ और आए दिन तो होते ही रहते हैं कितने किस्से. आज ही मैं किसी के घर पर था, उनके घर पर पेपर में फ्रंट पेज पर अनदर रेप केस हर दिन. मतलब मैंने न्यूज़पेपर कुछ एक दो तीन महीने बाद मेरे आंखों के सामने आया, दो तीन महीने पहले भी फ्रंट पेज पर रेप केस था, दो तीन महीने बाद भी फ्रंट पेज पर रेप केस. और मैंने यहां तक कुछ लोगों की चर्चा सुनी, इस पॉइंट के ऊपर मैं कहना चाह रहा हूं डिसेंसिटाइज्ड, कि वो लोग चर्चा नहीं 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 वो तो दिल्ली में हुआ ना, वो थोड़ा सनसनी था, ये तो नॉर्मल रेप केस था. इसको कहते हैं द बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम. नथिंग सरप्राइजेस अस एनी मोर एज फार एज सिन इज कंसर्न. वी बिकम सो डीसेंसिटाइज्ड, हम इतने ज्यादा सुन्न हो गए हैं कि हम लोग अब कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं नहीं दिल्ली में जो हुआ वो सेंसेशनल रेप केस था, ये तो बहुत ऑर्डिनरी है. तो ये बहुत भयावह चीज है, इसी को भगवान कह रहे हैं. When we become totally desensitized as far as sin is concerned. बहुत साल पहले मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी टेलीविजन के ऊपर और ये एक अमेरिकन लेडी ने पुस्तक लिखी और वो खुद का एक किस्सा बता रहे हैं कि न्यूयॉर्क में वो ड्राइव कर रहे थे और उनके आंखों के सामने एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक बड़ा ट्रक एक व्यक्ति के सर को कुचल कर चला गया. तो इनके आंखों के सामने उसका कुचला हुआ सर दिख रहा है और ये लिखते हैं कि मुझे मेरे हृदय के अंदर कोई वेदना नहीं हुई. वो लिखती हैं, इंग्लिश में वो लिखती हैं, आई फेल्ट एज इफ इट इज अनदर सीन फ्रॉम अ हॉलीवुड मूवी. उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके आंखों के सामने एक जिंदा व्यक्ति मरा और उसका सर कुचला गया और वो लिखती हैं, आई फेल्ट एज इफ इट वॉज अनदर सीन फ्रॉम सम एक्शन बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी. फिर वो लिखती है व्हाई इट हैपेंड, बिकॉज आई हैव सीन दोस सीन सो मेनी टाइम्स ऑन टीवी, इट नो मोर क्रिएट्स एनी सिंपथी इन माई हार्ट, नो मोर क्रिएट्स एनी सिंपथी इन माई हार्ट। तो ये है अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब अधर्म का सम्मान इस तरीके से अलग अलग तरीके से हमारे जहन में डाला जाता है एंड वी बिकम डीसेंसिटाइज्ड। तो आज के हमारे चर्चा के विषय इस प्रकार से रहेंगे, चार युगों में धर्म की स्थिति। ये महाभारत का एक श्लोक है, उस श्लोक पर आधारित है ये। चार युगों में धर्म की स्थिति, पांच प्रकार के अधर्म श्रीमद् भागवत के अनुसार, छह प्रकार के व्यवहारिक धर्म टीकाकार बलदेव विद्याभूषण इनके अनुसार, आत्मानं सृजामि शब्दों की व्याख्या, भगवान द्वारा चार प्रकार के प्रयोजन, और अंत में धर्म के विषय में अंतिम चार प्रश्न। तो सबसे पहले चार युगों में धर्म की स्थिति। तो महाभारत में व्यासदेव जी इसका वर्णन करते हैं, सत्युग त्रेता द्वापर और कलयुग। ये ध्यान में आप रखिए कि चाहे सत्युग क्यों ना हो, वो भी भौतिक संसार में, कलयुग तो खैर हम लोग उसका अनुभव कर ही रहे हैं। तो धर्म की स्थिति क्या होती है इन चार युगों में महाभारत के अनुसार। सत्युग में लोग धर्म को जानते हैं, धर्म का ज्ञान है, धर्म का पालन करने का संकल्प लेते हैं और धर्म का पालन भी करते हैं। तो ये जो धर्म पालन बताया गया है सत्युग में, ये ज्ञान, ज्ञान के पश्चात संकल्प, संकल्प के पश्चात पालन। अब त्रेता युग में क्या होता है, धर्म पालन का संकल्प, प्रोमिनेंट फीचर ऑफ त्रेता युग, कि वहां पर पालन कम हो रहा है और केवल संकल्प लिया जा रहा है। जैसे वो एक मैनेजमेंट का एग्जाम्पल हम देते हैं, थ्री फ्रॉग्स सिटिंग ऑन द वॉल ऑफ अ वेल, वन डिसाइडेड टू जंप, हाउ मेनी रिमेंड ऑन द वॉल, स्टिल थ्री विल बी रिमेनिंग ऑन द वॉल बिकॉज वन हैज जस्ट डिसाइडेड टू जंप, ही हैजंट जंप्ड येट। तो त्रेता युग में हां धर्म का पालन करेंगे, संकल्प, संकल्प। द्वापर युग में धर्म का ज्ञान है, पता है धर्म क्या है, धर्म का ज्ञान है, संकल्प नहीं, पालन भी नहीं। आप सोच रहे होंगे कलयुग के लिए कुछ बचा है, धर्म का विनाश, न तो सही ज्ञान है, क्योंकि सही ज्ञान नहीं है तो फिर संकल्प भूल जाइए, और संकल्प ही नहीं है तो पालन क्या होगा। इसलिए धर्म का विनाश कलयुग में हो रहा है। तो अब श्रीमद् भागवत के अनुसार पांच प्रकार के अधर्म, तो ये ध्यान से, क्योंकि भागवत के जो टीकाकार हैं उन्होंने कहा है कि सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में ये जो पांच प्रकार के अधर्म बताए हैं, ये विशेष रूप से कलयुग, विशेष रूप से कलयुग में ये पांच प्रकार के अधर्म देखे जाते हैं। तो ये श्रेणियां कलयुग के लिए बताई गई है। तो सातवें स्कंद में ये सुंदर श्लोक है, विधर्म पर धर्मश्च आभास उपमा छल अधर्म शाखा पंचम्या धर्मज्ञो अधर्मवत् त्यजेत। देर आर फाइव ब्रांचेस ऑफ ए रिलीजन एप्रोप्रिएटली नोन एज विधर्म, रिलीजियस प्रिंसिपल्स फॉर विच वन इज अनफिट, परधर्म, प्रिटेंशियस रिलीजन, आभास धर्म, एनालॉजिकल रिलीजन, उपधर्म एंड चीटिंग रिलीजन, छल धर्म। वन हु इज अवेयर ऑफ रियल रिलीजियस लाइफ मस्ट अबैंडन दीज फाइव एज इररिलीजियस। घबराइए मत, हम एक एक इसके इसको लेकर चर्चा करेंगे अभी। तो पांच प्रकार कि अधर्म इस श्लोक के अनुसार ये है, विधर्म, परधर्म, आभास धर्म, उपधर्म और छल धर्म। आपको लग रहा होगा कि अधर्म में भी इतनी वैरायटी है चूज करने के लिए। हाँ, कलयुग की स्पेशलिटी क्या है कि जब आपको भगवान से दूर जाकर पाप कृत्य करना है तो उसके लिए बहुत वैरायटी। तो सबसे पहले विधर्म, धर्म के नाम पर पाप करना। हम इसका एक एक एग्जाम्पल्स भी लेंगे कि कैसे धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर भी पाप किया जा सकता है। फिर है परधर्म, अन्यों का धर्म। जैसे भगवान गीता में भी कहते हैं, श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्म भयावह। तो अपना स्वधर्म छोड़कर अन्यों का धर्म पालन करने की कोशिश करना, वो भी एक प्रकार का अधर्म बताया गया है श्रीमद् भागवत के अनुसार, उसको कहते हैं परधर्म। आभास धर्म का अर्थ है आधा अधूरा धर्म पालन करना। और ये जो आधा अधूरा धर्म है, कई बार हम देखते हैं कि कलयुग में ये आभास धर्म के वजह से जो धर्म को सही प्रकार से जानना भी चाहते हैं, उसका पालन भी करना चाहते हैं, तो विमुख हो जाते हैं कि अरे, जब वो देखते हैं किसी को आधा अधूरा धर्म, विशेष रूप से जब उनके ही परिवार में वो देखते हैं कि आधा अधूरे तरीके से धर्म का पालन किया जा रहा है, इसको कहते हैं आभास धर्म। उपधर्म का अर्थ है चुनिंदा धर्म, सिलेक्टिव, कि हम हमारे सहूलियत, ये शब्द जानते हैं, हमारे सहूलियत के अनुसार, कन्वीनियंस के अनुसार हम शास्त्र में से एक पर्टिकुलर प्रकार का धर्म जो है उसको, उसका चुनाव करते हैं और देश काल पात्र नहीं देखते हुए, क्योंकि वो हमें थोड़ा कन्वीनियंट लग रहा है, इसलिए कन्वीनियंस के तौर पर उसको पालन करते हैं, तो उसको कहते हैं चुनिंदा। और छल धर्म तो आप समझ गए होंगे, धर्म के नाम पर धोखा। ये बहुत बड़ी स्पेशलिटी है कलयुग की कि अगर ये सारे मूर्तिमान कली के डिग्रीज हैं, पांच प्रकार के डिग्रीज, तो उसमें से पीएचडी हासिल किया है कली ने किस पे? छल धर्म, अंतिम वाले में, धर्म के नाम पर धोखा। तो हम इसमें से अगर एक एक एग्जाम्पल्स लें, विधर्म, परधर्म, आभास धर्म, उपधर्म और छल धर्म। तो सबसे पहले हम आप लोगों से एक एक एग्जाम्पल सुनना चाहेंगे। धर्म के नाम पर पाप कहां पर आपको दिखता है? धर्म के नाम पर पाप, मर्डरिंग, बट हाउ विल दे डू इट इन द नेम ऑफ रिलीजन? हाँ, एनिमल सैक्रिफाइस। ओके, आई थॉट मर्डरिंग यू रेफर्ड टू ह्यूमन बींग्स। ओके, बलि चढ़ाना, हाँ ये बात सही है कि ये जो भगवान के नाम पर बलि चढ़ाया जाता है जानवरों के, प्राणियों की, तो ये एक प्रकार, एक पूरा प्रकार का ये पाप है। मेरे खुद के एक बचपन के, मेरी एक क्लासमेट, वो बंगाल से है और उनको बचपन में काली घाट, आपने सुना होगा, कलकत्ता में, वहां लेकर गए, तो उन्होंने वो जो वहां पर ब्लडशेड, खून वगैरह इतना देखा, तो उन्होंने उस समय बचपन में डिसाइड कर लिया कि यदि ये प्राणियों को इस प्रकार से मारा जाता है तो मुझे ये आगे से नहीं खाना। तो वो मुझे बता रही थी, वो कुछ 2-3 साल पहले यहां नासिक में आई, वो बता रही थी कि बचपन में जब कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं था उसके पास और उस पूरे परिवार में, पूरे खानदान में सब लोग वो खाते थे, लेकिन उसको किसी ने कुछ बताया नहीं था। केवल वो देखने मात्र से उसके अंदर ये सारे प्रश्न उठने लगे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा इसके साथ ये हुआ कि अब ये जब बड़ी हुई थी, इसकी शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी वेजिटेरियन बंगाली मिलना थोड़ा मुश्किल था, तो इसकी शादी नहीं हो रही थी, तो इन्होंने मैट्रिमोनियल्स में डाल दिया कि आई नीड अ वेजिटेरियन हस्बैंड। तो एक ही इनको व्यक्ति रिप्लाई किए, और वो व्यक्ति कानपुर आईआईटी के इस्कॉन प्रोग्राम अटेंड करने के बाद वेजिटेरियन बने। तो ये 2-3 साल पहले ये जो मेरी क्लासमेट यहां पर आई थी, इनका नाम पारोमिता बंदोपाध्याय, उनके पेरेंट्स यहाँ नासिक में रहते हैं, तो बता रही थी कि ऐसे ऐसे फिर मेरा विवाह इनसे हुआ। तो मैंने पूछा उनका नाम क्या था, उन्होंने कहा जपेश, जपेश उनका नाम। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि जब मैं एयरफोर्स में कानपुर में पोस्टेड था, तो मैं जब पहली दफा कानपुर आईआईटी के प्रोग्राम में गया था, तो मैं और ये जपेश एक साथ रिक्शा में बैठ के वापस आए थे। और ये किस्सा हुआ था ये मिस्टर जपेश की शादी इनसे होने से पहले। वर्ल्ड इज नॉट दैट बिग, स्पेशली इफ यू आर कनेक्टेड टू कृष्णा, इट बिकम्स इवन क्लोजर। तो हाँ, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर ये हत्याएं जो हो रही हैं, तो मेरे पास उदाहरण डायरेक्टली इनका है। आतंकवादी जो कि अपने धर्म ग्रंथ को कोट कर कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि जो काफिर हैं, जो हमारे धर्म का पालन नहीं कर रहे, उनको खत्म करो। और वो कोट करते हैं, वो कोट करते हैं कि हम जो भी मार रहे हैं वो हमारे धर्म के आधार पर मार रहे हैं। और हम लोग जब सुनते हैं तो हमको न केवल अविश्वास होता है इसके ऊपर, बल्कि हमें लगता है कि जानवर भी भले, जानवर भी भले। एज इट इज सेड दैट वी आर दी ओनली स्पीशीज हु आर सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉइंग अवर ओन स्पीशीज। एक खूंखार शेर भी वो खुद की जाति को नहीं मारता। तो यहां पर धर्म के नाम पर, और उनको आश्वासन क्या दिया जाता है, इन आतंकवादियों को, इन आतंकवादियों को आश्वासन दिया जाता है कि आप यदि जो हमारे धर्म का पालन नहीं कर रहे उनको, जितने को मारोगे आप, तो आपको जन्नत नसीब होगी। और न केवल जन्नत, कौन सी जन्नत नसीब होगी, वो जन्नत जहां पर आपका स्वागत करेंगी 72 कुंवरियां, 72 वर्जिन गर्ल्स विल वेलकम यू इन दैट पैराडाइज वेयर यू विल गो वंस यू किल दोज हु डू नॉट फॉलो आवर रिलीजन। तो हाल ही में मुझे एक ईमेल हमारे एक भक्त ने भेजा कि अलकायदा, उन्होंने इतना आतंक फैला दिया हाल ही में, इतने लोगों को मार दिया कि जन्नत से मैसेज आया कि भाई वहां पर शॉर्टेज हो रहा है, कुंवारियों का शॉर्टेज हो रहा है, तो यहां पर आतंकवाद कम करो। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये सारे आश्वासन दिए जा रहे हैं और इन आश्वासनों को लेते हुए ये लोग ऐसा आतंकवाद कर रहे हैं। जैसे मुझे एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था कुछ साल पहले, ये जो अफगानिस्तान के कुछ मदरसा आप लोग जानते हैं, जहां पर इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, शिक्षण दिया जाता है, तो वहां उस देश के मदरसा में एक सेकेंडरी स्कूल, मेरे ख्याल से 8th या 9th क्लास का एक मैथमेटिक्स का पेपर, फाइनल एग्जाम का एक सम आता ना मैथमेटिक्स के सम, तो मैथमेटिक्स का सम इस प्रकार से था। अब देखिए कि इस प्रकार का मैथमेटिक्स का सम यदि आप 8th या 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को दे रहे हो तो उसके जहन में क्या बात आ रही। तो मैथमेटिक्स का सम ये था, इफ अ हिंदू इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम यू एंड यू आर हैविंग अ AK-47 विच कैन शूट अ बुलेट एट 1000 माइल्स पर आवर, then in how much time, how many Hindus will you be able to kill with one AK-47? Solve. कल्पना कीजिए, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है और इस प्रकार से उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे आप जैसे जैसे आपका एजुकेशन में वृद्धि कर रहे हो तो अन्य धर्मों के प्रति नफरत करने में भी आपकी वृद्धि होनी चाहिए, और इसको कहते हैं विधर्म, धर्म के नाम पर पाप। पर धर्म, अन्यों का धर्म, इसमें उदाहरण द्रोणाचार्य का दिया गया कि द्रोणाचार्य वो एक ब्राह्मण थे और भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि भाई आप एक ब्राह्मण हो, यहां पर युद्ध भूमि में क्या कर रहे हो, तो क्यों? क्योंकि उनका भरण पोषण हस्तिनापुर कर रहा था, इसलिए भरण पोषण हस्तिनापुर कर रहा है, इसलिए हस्तिनापुर के प्रति अपनी वफादारी निभाते हुए वो खड़े हो गए, जबकि एक ब्राह्मण होने के नाते वो कह सकते थे कि भाई मुझे युद्ध भूमि में आना अनिवार्य नहीं है। तो ये उदाहरण है पर धर्म का, अन्यों का धर्म पालन करना, आधा अधूरा धर्म। अब ये हम देखते हैं अक्सर ऐसे भारतीयों में जो अब अंग्रेजियत को अपना लिए। एक है जैसे कि आपने सुना होगा एनआरआई जानते हैं, किसको कहते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। तो एक है नॉन रेसिडेंट इंडियंस और एक है आरएनआईस, रेसिडेंट नॉन इंडियंस। यहां रह रहे हैं लेकिन कोई भी प्रकार का भारतीय पना नहीं अपनाना चाहते, इसलिए अक्सर बंबई में, यहां पर तो बहुत कम है, बंबई में जब मैं प्रचार करता था तो वहां पर ऐसे नमूने बहुत मिलते थे जो इतना ज्यादा प्रभावित। तो मैं जिस कॉलेज में प्रचार करता था, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वहां पर हमारे इस्कॉन के एक भक्त जो कैनेडा के रहने वाले, उनको मैं, जॉन पॉल उनका उस समय नाम था, तो उनको मैं लेकर गया प्रोग्राम पर। तो वहां पर प्रोग्राम में वन टाइम प्रोग्राम था और वहां पर सब जो लड़के लड़कियां कॉलेज के आए हुए थे सब उस प्रकार की वेशभूषा पहने हुए, और यहां पर ये कनाडा के हमारे ब्रह्मचारी शेवन हेड शिखा धोती कुर्ते में। तो मैंने एक 20 मिनट का लेक्चर दिया, फिर मैंने उनको कहा कि आप कुछ बोलिए। सो ही सेड, व्हेन आई लुक एट यू नो ट्राइंग टू इमिटेट वी फॉरेनर्स, I simply pity you because you are not able to properly imitate us. You are pathetic in that. You are pathetic in imitating we Westerners, and simultaneously you are doing it at the expense of leaving your culture. जैसे मैं कुछ दो साल पहले लंदन में एक भारतीय परिवार है वहां पर मैं प्रोग्राम के लिए गया हुआ था, तो वो बच्चे वहीं पे पैदा हुए, वो लोग पूरा भारतीय परिवार है वो, लेकिन बच्चे वहीं पर पैदा हुए, तो वो लोग अब वहीं पर पैदा हुए तो उनको हिंदी नहीं आती एक तो, और वो जो अंग्रेजी भी बोलते हैं एकदम उस प्रकार की अंग्रेजी बोलते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये ब्रिटिशर बोल रहा है या इंडियनाइज्ड इंग्लिश. इंडियनाइज्ड इंग्लिश अलग होती है, द फ्रूट्स वर लटकिंग ऑन द ट्री. द मैंगोज वर लटकिंग ऑन द ट्री व्हाइल आई वॉज बेलिंग द चपातीस. तो अब हुआ क्या कि डाइनिंग टेबल पर प्रसाद जब सर्व किया गया तो मैं अपना दाल चावल अपने उंगलियों से मिलाकर खा रहा था, तो ये दो बच्चे बैठे हुए मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं कि पता नहीं कहां से जाहिल आ गया. तो ऐसे देख रहे, मैंने कहा एनी प्रॉब्लम, इट्स सो अनक्लीन ईटिंग विथ योर फिंगर्स, सो अनक्लीन. What do you mean unclean? This is not what you know we have been taught over here. मैंने बोला what is clean? फिर उन्होंने दिखाया कैसे वो छुरी चाकू कांटा उसके साथ कैसे खाते हैं. तो मैंने एक ही चीज पूछी, see my logic is these five fingers belong to me. I know that it has gone always in my mouth only. But the spoon which you are talking about, I don't know कितनों के मुंह में चम्मच गया. So which is more clean? अभी उनका कई बार उनका logic अलग रहता है. वो लोग का जो hygiene और cleanliness standards वो अलग रहता है. लेकिन मेरा प्रश्न यहां पर यह था कि हाँ ठीक है, वो अगर अंग्रेज जो भी कर रहे हो हम क्यों उसकी नकल करें, और अगर हम नकल भी कर रहे हैं तो क्यों उसको हम उसका प्रचार कर कर. हाँ ठीक है, कोई ऐसी स्थिति में कोई पालन कर रहा है किसी चीज का आपातकालीन स्थिति में वो अलग बात है, परंतु उसको एक नॉर्म बना लेना और उसका प्रचार करना. तो डिस्कशन में वो मेरे को पूछने लगे, व्हाट इज सो ग्लोरियस अबाउट इंडिया. मैंने पूछा हैव यू एवर बीन. No, we have just heard, you know, people passing stool by the side of the road and honking horns and all that. Maine pucha, and what is so glorious about this country, Britain? You tell me. Maine pucha, have you been to the British Museum here in London? Yeah, we have been. The famous British Museum. Well, what do you see over there? British Museum mein aap jaakar dekhoge, तो ब्रिटिशर्स ने जितनी अलग अलग कंट्रीज से चोरी की वो चोरी का माल वहां पर डिस्प्ले किया हुआ है. तो मैंने उनको पूछा, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर डिस्प्लेड इन ब्रिटिश म्यूजियम इट्स नथिंग बट स्टोलन प्रॉपर्टी फ्रॉम अदर कंट्रीज. व्हाई इट्स कॉल्ड ब्रिटिश म्यूजियम, इट शुड बी कॉल्ड वर्ल्ड म्यूजियम. इफ टेक्निकली realistically the only thing which they are entitled to keep in that British museum is what belongs to Britain, what grows there is potatoes. Wo lagana chahiye wahan pe aloo. To kafi hamara is baat par discussion chal raha tha. Fir uske baad mein unhone unke kuch friends ko lekar aaye अब वो फ्रेंड्स थे एकदम अंग्रेज, वो ब्रिटिशर्स, गोरी चमड़ी, वो लोग सब थे। और यहां पर जितने भी भारतीय वहां पर जाते हैं, चाहे कितना भी वहां का वो लोग खा ले, चमड़ी तो यही रहती है अपनी। तो मिक्स क्राउड था, मिक्स क्राउड था, ब्रिटिशर्स भी थे, इंडियंस भी थे। तो एक ब्रिटिश टीनेजर ने क्वेश्चन पूछा, थोड़ा चैलेंजिंग टाइप क्वेश्चन था। तो उसने जोर से, आई वांट टू आस्क दिस वन क्वेश्चन, व्हाई यू इंडियंस हैव डिफरेंट कॉम्प्लेक्शंस, सम आर ब्लैक, सम आर ब्राउन, सम आर फेयर कॉम्प्लेक्शन, लाइक दैट, व्हाई यू, या तो मुझे, मैंने बहुत साल पहले एक ऐसे प्रश्न का उत्तर मैंने पढ़ा था किताब में, तो मैंने वो याद आया मुझे। मैंने कहा, आई गिव यू वन एग्जाम्पल, हैव यू सीन हॉर्सेस? हॉर्सेस यू विल ऑलवेज फाइंड देयर ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्शंस। यू विल फाइंड हॉर्सेस ब्लैक, यू विल फाइंड हॉर्सेस ब्राउन, यू विल फाइंड हॉर्सेस व्हाइट, बट डोंकीज आर ऑल सेम कलर। White. जैसे वो है ना, हमारे हमारे सरदार जी को एक अंग्रेज ने क्वेश्चन पूछा कि आपको तैरना आता है? उन्होंने कहा नहीं आता। तो वो अंग्रेज बोलता है, अरे कुत्तों को भी तैरना आता है, कुत्ते भी भले। तो सरदार जी पूछता है, तुमको तैरना आता है? तो अंग्रेज कहता है हाँ। तो तुम में और कुत्ते में क्या फर्क है? तो उसने भी सही आंसर दिया। तो ये जो कैटेगरी है कि जिसमें आधा अधूरा हम पालन करने की कोशिश करते हैं, जैसे मुझे याद है मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में जब था, तो एक दिन, मुझे अभी भी वो दिन याद है, ये सुबह का समय था, 11:30-12 का समय था, मंदिर में कोई नहीं था, मैं अकेला भगवान राधा गोपीनाथ के सामने जप कर रहा था। और मैं थोड़े, हमारा जो साउंड सिस्टम है इसी प्रकार इसी दिशा में है, तो साउंड सिस्टम के वहां व्यासासन है, व्यासासन के कोने में, तो मैं भी दिख नहीं रहा था। तो एक लड़का लड़की वो लोग प्रवेश किए, उनके हाथ में दो थैलियां थी, तो एकदम जैसे अल्टर के एकदम पास में आके खड़े हो गए यहाँ पर, और मैं कोने में मैं अपना जप कर रहा था। तो लड़के ने थैली में से एक बड़ी माला निकाली, वो लड़की ने भी निकाली, वो लड़के ने माला निकाल कर लड़की को दे दिया, लड़की ने पहन ली, लड़की ने माला निकाली, लड़की को दे दिया, लड़के ने पहन लिया। फिर इसने सिंदूर निकाला और पीछे से सिंदूर लगा दिया, और पीछे नहीं मुड़ रहे, सामने राधा गोपीनाथ के सामने ये सब कुछ उनका सब किस्सा चल रहा था। और फिर वो लोग मुड़े पीछे, तो लोग जा रहे थे, तो मैं बेसन का लड्डू देने गया उनको, तो मैंने उधर डब्बे में बेसन का लड्डू पड़ा था, तो मैंने देखा, देते हुए कहा शादी मुबारक हो। तो कई बार होता है क्या है कि हम, हाँ वो धर्म का कुछ पालन कर रहे थे कि भगवान के सामने करेंगे, इसको कहते हैं आभास धर्म। कि हाँ, अब वो कहां से सीखा है? बॉलीवुड से सीखा है कि भागकर शादी करने भगवान के सामने कर लेंगे तो फिर हो गया। पता नहीं आजकल वो भी करते कि नहीं करते। तो ये है आधा अधूरा धर्म, इसका जो हम अक्सर कलयुग के अंदर देखते हैं, इसको कहते हैं आभास। उपधर्म, चुनिंदा, चुनिंदा धर्म कर्मकांड के अंदर देखा जाता है कि इतना लंबा चौड़ा लिस्ट होता है, 33 करोड़ देवता हैं अलग अलग प्रकार के। आपको अगर लंबी आयु चाहिए, अच्छा पति बीवी जो भी चाहिए, उसके लिए अलग अलग देवता हैं। आपको आपकी विद्या बढ़ानी है उसके लिए है, लक्ष्मी बढ़ानी उसके लिए है, सरस्वती, क्या क्या है अलग अलग। तो उसमें से होता क्या है कि जब कोई केवल उतने भाग को अपने इच्छा पूर्ति होता ना, इच्छा पूर्ति गणेश। एक मैंने जयपुर में देखा, जयपुर में एक हनुमान जी का मंदिर, उसके ऊपर लिखा था अर्जेंट हनुमान जी। मैंने पूछा ये अर्जेंट हनुमान जी क्या है, बोले नहीं नहीं लोग यहां पर कोई भी उनकी अर्जेंट समस्या होती है हनुमान जी सॉल्व कर देते। तो ये सब है ना चुनिंदा धर्म है, इच्छा पूर्ति अर्जेंट। तो हमारे सिचुएशन के अनुसार उसको ढाल के उसमें से, उसको अर्ध कुकुटी न्याय भी बोलते हैं कि जो हमारे लिए ठीक है उसको चुनकर, चुनिंदा धर्म। और छल धर्म, धर्म के नाम पर धोखा। तो ये जो आजकल चीप कन्वर्जन्स चल रहे हैं, विशेष रूप से ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज, ये हाँ आप अगर सही प्रकार से धर्म का प्रचार कर उनको बताओ कि जीसस क्राइस्ट की ग्लोरीज क्या है, वो सही बात है। लेकिन जो बहुत ही चीप तरीके से कन्वर्ट किया जा रहा है, और ये चीप कन्वर्जन्स में आपको कुछ उदाहरण दूंगा, ऐसे ऐसे मैं लोगों से मिला हूं कि जो जिनको उस धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उनको जीसस क्राइस्ट कौन थे, क्या उन्होंने किया, क्यों वो आए थे, कुछ उसके बारे में उनको कोई सरोकार भी नहीं है, और उनको उस धर्म में कन्वर्ट किस प्रकार से किया गया कि भाई तुमको कर्जा है, तुम्हारा कर्जा हम भर देंगे, तुम ईसाई बन जाओ। एक व्यक्ति वो बता रहे थे कि उनको सर में दर्द होता था रेगुलरली, माइग्रेन का कुछ ऐसा प्रॉब्लम था, तो उनको एक ग्लास में उनको कहा कि ये दिस इज द होली वाटर, इफ यू ड्रिंक दिस होली वाटर योर हेडेक विल बी गॉन। तो उन्होंने क्या किया, वो होली वाटर अक्सर जैसे ऐसे केसेस आते थे तो होली वाटर में वो लोग सेरिडॉन पाउडर करके डालते थे, और उसको होली वाटर, तो वो पिएगा तो कुछ समय के लिए तो उसका सरदर्द ठीक हो जाएगा। बोला अरे ठीक हो गया, नाउ बिकम फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। दिस इज कॉल्ड चीप कन्वर्जन। जीसस क्राइस्ट इसके लिए नहीं आए थे कि सेरिडॉन घोल घोल के सरदर्द ठीक करो तुम्हारा, और उसको होली वाटर बोलो, तुम्हारा कर्जा दूर कर देंगे, तुम्हारा सरदर्द ठीक कर देंगे। इसको कहते हैं छल धर्म, चीप कन्वर्जन्स, कि धर्म के नाम पर जब धोखा दिया जा रहा है। तो हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे कि ये मैं जब जयपुर में था तो मैंने जयपुर में ये दो व्यक्तियों को देखा था। ये लोग फुटपाथ के डेंटिस्ट हैं, और इन्होंने फुटपाथ पर डेंटल क्लिनिक खोल लिया है, और एकदम बेधड़क वहां पर क्या क्या ये लोग डेंटल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और उस और न केवल बेधड़क डेंटल ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये लोग, बल्कि ये लोग ये वहां पर दावा दे रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि हम लोग जो रेगुलर डेंटिस्ट हैं उनसे ज्यादा अच्छे हैं, दाम कम है, जल्दी पहुंचाते हैं हम पेशेंट्स को घर पर। और हाँ, तो आप ये वीडियो है, इसमें आप देखिएगा कि ये दो व्यक्ति, एक जूनियर डॉक्टर है, एक सीनियर डॉक्टर है, जूनियर डेंटिस्ट है, सीनियर डेंटिस्ट है, तो एक है पुष्कर सिंह और एक है प्यारा सिंह। तो हमारे प्यारा सिंह वो सीनियर डेंटिस्ट हैं और पुष्कर सिंह जूनियर डेंटिस्ट है। और मैं आश्चर्यचकित हो गया कि एक तो ठीक है डर के मारे कोई ये सब छिप छिपा के कर रहा होगा, लेकिन खुलेआम फुटपाथ पर इन्होंने पूरा अपना डेंटल क्लिनिक खोल रखा है। और उससे ज्यादा आश्चर्य मुझे ये हुआ कि पेशेंट्स भी आ रहे हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग जो ये अलग अलग प्रकार के धर्म, ये फाइव ब्रांचेस ऑफ रिलीजन। तो ये एक नमूना है कि कैसे कोई व्यक्ति बेधड़क दावा देते हुए जो उसके अथॉरिटी में नहीं है, जो उसके अधिकृत चीजें नहीं है, उसको अधिकृत करते हुए दिखाते हुए वो जब करता है। तो इसलिए यहां पर इसलिए हमने इसका टाइटल दिया है कलयुगी सस्ता समाधान। इसलिए धर्म में भी लोग इसी प्रकार से आते हैं कि अरे अगर सस्ते में आप दान निकाल दो, उसको ट्रीटमेंट कर दो, या सस्ते में हमको ये अनुभव दे दो कि भाई तुम धर्म का भी पालन कर रहे हो, तो हमको ये सब नियम वियम पालन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चार नियम, फिर ये 16 माला और 10 नाम अपराध, ये बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं ये इस्कॉन के अंदर एकदम। तो ये एग्जाम्पल उसका।
उनका जरा कुर्सी पंखे नौकर चाकर एक्सरे उक्सरे लेने से वो लोग पैसा ज्यादा लेते हैं, ये लोग दे नहीं सकते हैं, तब ये लोग हमारे पास आते हैं।
मैं कोई मुश्किल नहीं लगता, मैं बहुत जल्दी काम सीख गया। क्यों टेक्निकल मैं काम करता हूँ, क्यों साइकिल का भी काम करता हूँ, फाइल चलाने भी मेरे को आती है, कतिये भी चलाना मेरे को आती है, तो ये मेरे को सभी औजार चलाने आते हैं।
हम जल्दी दे देते हैं, कई जल्दी वाले ग्राहक आते हैं, हमने ट्रेन में जाना है, तो आप फिक्स कर देते हैं।
कभी नहीं देवा सब क्या, फिर वो चलता रहता है, खाना कुछ चलता सर, अब इससे ये कि खाना सर घुसेगा नहीं।
भैया स्टेशन पे भी थोड़ी बात होनी चाहिए, थोड़ा चेहरा अच्छा लगता है, नहीं तो वहाँ कई प्रकार के पैसेंजर आते हैं, तो अच्छी बात है, इसीलिए इनके पास ही आता हूँ। इन्हों भाई कहाँ नहीं किया हुआ है।
जब मैं किसी के दांत अच्छे लगा के वो खुश हो जाता है, तो तब मेरे को तसल्ली होती है भी मेरे को ये पैसे अच्छे लगे। अगले को कोई तसल्ली नहीं हुई तो मेरे को वो पैसे भी बुरे लगते हैं। ये मेरा खुद का सिद्धांत है, दूसरों के लिए नहीं मैं कह सकता।
हरे कृष्णा। तो देखिए यहां पर मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित में हो गया कि जो पेशेंट्स उनकी हिम्मत देखो, ये कर रहे हैं वो तो इनकी हिम्मत तो है ही, बेधड़क ये लोग कर रहे हैं। जो पेशेंट जा रहे हैं दांत निकलवा रहे हैं, तो ये स्थिति है धर्म की भी कि जब हमको सस्ते में कुछ दिया जाता है तो सस्ते वाली चीज जो है वो हर समय, विशेष रूप से यहां पर हम लोग कैलकुलेशंस करना शुरू करते हैं कि हाँ भाई इतने कम दाम में अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो फिर क्यों नहीं। फाइनली यहां पर जो बत्तीसी है वो ठीक से दिख रही है, जैसे वो कुली था, वो कुली ने कहा कि कस्टमर जब देखते हैं दांत नहीं तो सामान नहीं देते उठाने के लिए, इसलिए कस्टमर के लिए अच्छा दिखना चाहिए यहाँ पर बत्तीसी, इसलिए मैं तो इन्हीं के पास आता हूँ काम कराने के लिए। और उसने लास्ट में कह दिया कि मेरा उसूल है, ये मेरा सिद्धांत है कि मैं कस्टमर को एकदम खुशी खुशी भेजता हूं। तो देखिए उसूल भी बना लिए उन्होंने, सिद्धांत भी बना लिए, और आगे चलकर हो सकता है संप्रदाय भी बन जाए कि भाई हमारा एक खानदान का बिजनेस है, हम लोग यहां पर साइकिल रिपेयर पहले करते थे अभी यहां पर यह शुरू कर दिया। तो जो व्यवहारिक धर्म है उसका अर्थ ये नहीं कि हम तोड़ मरोड़ कर अपने सहूलियत के अनुसार उसका पालन करें। इसलिए बलदेव विद्याभूषण ये छह प्रकार के व्यावहारिक धर्मों के विषय में बताते हैं। सबसे पहला है युग धर्म। हर एक युग में भगवान उस युग का युग धर्म प्रस्थापित करते हैं। कलयुग का युग धर्म क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत्पश्चात मानव धर्म। तो युग धर्म जो है वो उस युग के मानवों के लिए, और मानवों के अंदर हम अगर देखें तो पुरुष का धर्म अलग है, स्त्री का धर्म अलग है। ये सब डिटेल्स हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं कि युग धर्म में मानव धर्म और उनका विशेष रूप से उनके योनि के अनुसार कौन सा धर्म होना चाहिए। फिर हम जिस स्थान में पैदा हुए, हमारे देश के प्रति हमारा धर्म क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है समझना। जैसे कि अर्जुन वो हस्तिनापुर के प्रति उनका जो धर्म था उसका पालन नहीं कर रहे थे, और अर्जुन के ठीक विपरीत भीष्म पितामह जो खड़े थे, जो कि अधर्म के झंडे के नीचे खड़े थे, परंतु वो देश धर्म का पालन कर रहे थे। इसलिए भीष्म पितामह के विषय में कहा था कि वो अंत में जो बाणों की शैया पर वो लेटे हुए, फिर वो उन्होंने मकर संक्रांति के दिन वो भगवत धाम गए, क्योंकि उनको जो उनका निर्धारित धर्म था उसका पालन उन्होंने ठीक से किया। उसके पश्चात बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि एक मुख्य धर्म होता है। जैसे कि मनुष्य जीवन हमको प्राप्त हुआ है, मुख्य धर्म है अब इस मनुष्य जीवन में हम आत्म साक्षात्कार करें और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से अपने आप को मुक्त करते हुए भगवत धाम को प्राप्त करें, यह मुख्य धर्म है। तो मुख्य धर्म के साथ साथ है अब गौण धर्म, उसको दुर्लक्ष नहीं करना है। अब गौण धर्म क्या हो गया? हमारे शरीर का ध्यान रखना। अब शरीर का ध्यान रखना यह देहात्म बुद्धि नहीं है। यदि हम शरीर का ध्यान रख रहे हैं मुख्य धर्म को हासिल करने के लिए, तो वो गौण धर्म मुख्य धर्म का सहकारात्मक बन जाता है। इट कोऑपरेट्स विथ द मुख्य धर्म। एक सरल सा उदाहरण है, यदि आपको यहां से दिल्ली जाना है तो आपको एक ट्रेन दिल्ली लेकर जा रही है, परंतु ट्रेन स्टेशन तक पहुंचने के लिए आप रिक्शा लेते हैं, तो रिक्शा लेना उस पर ध्यान देना। फिलहाल आप ट्रेन पर ध्यान नहीं देंगे, रिक्शा ठीक से आपको पहुंचाए नासिक रोड रेलवे स्टेशन, तो रिक्शे वाले को ढूंढना, सही रिक्शे वाले को ढूंढना, और वो आपको टाइम पर ले जा रहा है ट्रैफिक से बचाते हुए, उस पर जो ध्यान दे रहे हैं, हो सकता है कि वो गौण धर्म होगा, परंतु उद्देश्य क्या है, आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचना। तो ये है गौण धर्म। और इतना सब होने के बावजूद कई बार बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि ऐसी स्थिति आएगी भौतिक संसार में और कलयुग में जब आपको आपातकालीन धर्म का भी पालन करना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपातकालीन धर्म का अर्थ है इमरजेंसी रिलीजन। जैसे भगवान बुद्ध वो अवतरित हुए आपातकालीन धर्म, और कई बार आपातकालीन धर्म ऐसा है कि वो उस केवल समय के लिए पालन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर एक चोर बैंक लूटकर भाग रहा है, गाड़ी में जा रहा है, पुलिस उसके पीछे, आवाज आ रही है, पुलिस उसके पीछे है और चोर 80 की स्पीड पर जा रहा है, और पुलिस अपने वैन में है और स्पीड लिमिट सामने पुलिस देखता है 60, स्पीड लिमिट इज 60, लेकिन चोर 80 के स्पीड पर जा रहा है। अब आप क्या करोगे, आप अगर पुलिस हो तो? हाँ, 100 की स्पीड पे जाएं, लेकिन आप तो फिर धर्म को तोड़ रहे हो, आपके पुलिस के धर्म को, 60 के स्पीड पर जाना है आपको लिखा है। अब यहां पर आता है आपातकालीन धर्म। हाँ, अब अगर पुलिस 100 की स्पीड लिमिट तोड़ के उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है और आम आदमी देख रहा है पुलिस ने तोड़ा, चलो मैं भी 100 की स्पीड, उसके लिए गलत है वो। तो कई बार होता क्या है कि आपातकालीन धर्म को हम अपना स्वधर्म बना लेते हैं, और वो फिर कौन से कैटेगरी में आता है, चुनिंदा धर्म। चुनिंदा धर्म हमने जो चर्चा की कि चुनिंदा धर्म वाले वो लोग करते क्या है कि आपातकालीन धर्म को उठाएंगे कहीं से, अरे देखो उसने स्पीड लिमिट तोड़ा ना पुलिस ने 100, तो फिर मैं क्यों नहीं, पुलिस तोड़ सकता तो मैं क्यों नहीं। इसलिए हमने इसकी पहले भी चर्चा की है कि हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत सी चीजें जो है उसको हमको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझना है। उसको एक होता है टेक्स्चुअल मीनिंग और एक है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। तो ये जो 6 प्रकार के व्यावहारिक धर्म बलदेव विद्याभूषण बताते हैं, ये हमें हमारे निजी जीवन में पालन करते हुए अपने परम उद्देश्य को प्राप्त करना है। अब आगे भगवान आत्मानं सृजामि, ये 2 शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आज के श्लोक में। तो आत्मानं सृजामि का अर्थ है, आत्मानं का अर्थ है, भगवान कह रहे हैं निज रूप, सृजामि का अर्थ है निर्माण में करता हूं। तो आत्मानं सृजामि का अर्थ हुआ, भगवान बोल रहे हैं कि मैं अपना निज रूप निर्माण करता हूं। किस लिए? धर्मस्य ग्लानि अधर्मस्य अभ्युत्थानम्। ध्यान में रखिए 2 चीजों के लिए भगवान बोल रहे हैं मैं अपना निज रूप निर्माण करता हूं। तो हमने मेरे ख्याल से पहले भाग में ये दशावतार, इनकी चर्चा की थी कि ये दशावतार भगवान के हैं क्या। आत्मानं सृजामि है, भगवान जो मत्स्य रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने एक निज रूप धारण किया उस समय उस समस्या का समाधान दिलाने हेतु। उसके पश्चात भगवान कूर्म के रूप में अवतरित हुए, इसलिए स्टेट स्पेसिफिक भगवान को कहा जाता है कि जब यदा यदा ही, जो आज के श्लोक में है कि जब जब जहां जहां जिस जिस तरीके से धर्म की ग्लानी होती है और अधर्म का सम्मान होता है तो भगवान वो रूप धारण करते हैं। जैसे यहां पर केशव धृता शुकर रूपा, उसके पश्चात अभी हम नरसिंह भगवान की जयंती मनाने वाले हैं, सो नरसिंह भगवान उन्होंने एक ऐसा रूप धारण किया उस समय ब्रह्मा जी ने जो वरदान इसको दिए थे हिरण्यकशिपु को, और प्रहलाद महाराज ने जो वाक्य कह दिया था वो सबको पूरा करते हुए एक ऐसा रूप भगवान ने निर्माण किया, आधा सिंह आधा नर, नरसिंह। तो इसको कहते हैं आत्मानं सृजामि। वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, बुद्ध, और यहां पर हम चर्चा कर रहे थे कि इन्होंने ये विशेष इनका अवतार लिया आत्मनम सृजामि, आपातकालीन धर्म को स्थापित करने के लिए, क्योंकि उस समय धर्म के नाम पर पशु हत्या हो रही थी, तो उस पशु हत्या को रोकने के लिए इसलिए उन्होंने कह दिया अहिंसा परमो धर्म, उन्होंने ये कहा, तो वो आपातकालीन धर्म का की स्थापना करने के लिए। और फिर अंततः आने वाले हैं कल्कि अवतार, तो ये सब आत्मानम सृजामि, भगवान जो कह रहे हैं कि मैं ही अपने निज रूप से ये अलग अलग रूप निर्माण कर समस्याओं का, अधर्म को धर्म में परिणित करने का, उसका समाधान करने हेतु मैं अवतरित होता हूं। तो भगवान के हमने कुछ और विशेष अवतार इसकी भी चर्चा की थी कि न केवल आत्मानम सृजामि भगवान के ऐसे प्रमुख दश अवतारों के विषय में हम समझते हैं, बल्कि ये सारे अवतार, धाम अवतार, अर्च विग्रह का अवतार, ग्रंथ अवतार, नाम अवतार, भक्त अवतार, ये सब आत्मानम सृजामि में समझना है हमें। कि भगवान जब बोल रहे हैं कि कई लोग पूछते हैं ना अभी क्यों नहीं भगवान आ रहे, तो भगवान इन तरीके से भी अवतार लेकर धर्म की ग्लानी को दूर कर रहे हैं और जो अधर्म का सम्मान हो रहा है उसको भी दूर कर रहे हैं। अब आत्मानम सृजामि को हम यदा यदा ही, जो पहली लाइन है आज के श्लोक की, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली लाइन में भगवान ने कहा है कि यदा यदा ही, याद है आप लोगों को, यदा यदा ही का अर्थ हमने समझा था जब जब, जहां जहां, जिस स्थान पर, जिस स्थिति में धर्म की ग्लानी और अधर्म का सम्मान होता है। तो यदा यदा ही और आत्मानम सृजामि का कनेक्शन क्या है कि जिस भी स्थिति में, जिस भी रूप में आवश्यकता पड़ती है, मैं उस रूप का निर्माण कर अवतरित होता हूं। श्रील प्रभुपाद ने कहा भगवान यहां तक कि 84 लाख योनियों में, हर एक योनि में भगवान अपने निज रूप में अवतरित हुए हैं, एक मच्छर के रूप में भी भगवान अवतरित हुए हैं, पुराणों में उसका भी वर्णन है। तो ये कनेक्शन फर्स्ट लाइन और इस लास्ट लाइन का है। अब अंग्रेजी में ये जो क्वालिटी है आत्मानम सृजामि, इसको कहते हैं स्टेट स्पेसिफिक। स्टेट स्पेसिफिक का अर्थ है आत्मानम सृजामि, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को भगवान स्पेसिफिक सॉल्यूशन से दूर करते, अर्थात भगवान पहले देखते हैं कि कौन से युग में भगवान का कौन सा अवतार वो रिलेवेंट रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा, डुएबल रहेगा। जैसे कि कलयुग में भगवान जानते हैं कि हमारी स्थिति ऐसी है, कलयुग के विषय में, हमारे विषय में क्या बताया श्रीमद् भागवत में, प्राण अल्प आयुष सभ्य कलावस्मिन युगे जना, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य युपद्रित, सब कुछ मंद है, स्मृति मंद है, बुद्धि मंद है, आयु कम है, शक्ति कम है, सब कुछ हमारा मंद है, इसलिए कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनत एव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजे। इसलिए भगवान ने कह दिया कि जहां कहीं पर भी आप हो, चाहे बच्चे बूढ़े, नारी नर, अनपढ़ गंवार, पढ़े लिखे, कोई पाश्चात्य देश का, यहाँ कोई भी कॉम्प्लेक्शन का है, कहीं का भी है, कोई घोड़ा है, घोड़ा है, गधा है, कहीं का भी है, करना क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो वहां किस स्थिति का मुआयना कर भगवान आत्मानम सृजामि, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कहा है स्टेट स्पेसिफिक। और आत्मानम सृजामि का एक और अर्थ हमारे आचार्य बताए हैं कि भगवान जो हमारी योनियां हैं 84 लाख योनियां, इन योनियों के अंदर भगवान ने हमारे समस्याओं का समाधान दे दिया, उसका भी अर्थ है आत्मानाम सृजामि। आत्माओं को अलग अलग प्रकार के, जो आत्मा योनियों में गए हैं, जैसे कि हमारे मनुष्य योनि की तो चर्चा करेंगे, अभी हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा साइंटिफिक वीडियो है ये, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर बताया गया है कि एक प्रकार के प्राणी वुल्फ, वुल्फ को क्या बोलते हैं, भेड़िया, भेड़िया, लकड़बग्गा, वुल्फ आसान रहेगा समझ, कोल्हा। तो कैसे ये जो वुल्फ्स हैं, ये लोग प्रकृति के अंदर अन्य जो योनि हैं उनके समस्याओं का समाधान ये कैसे करते हैं? तो यहां पर आत्मानं सृजामि जो बताया गया है कि भगवान अगर खुद भी निज रूप न लें, तो भगवान ने 84 लाख योनियों के अंदर ऐसा सिस्टम बनाया है कि एक योनि दूसरे योनि की समस्या का समाधान बन जाते हैं। इसको भी आत्मानं सृजामि कहते हैं। तो ये आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इनके विषय में ये वीडियो है। इस वीडियो में शुरुआत में वो जो कोल्हा चिल्लाता है, आप घबराइएगा मत, उसकी आवाज ही वैसी है।
One of the most exciting scientific findings of the past half century has been the discovery of widespread trophic cascades. A trophic cascade is an ecological process which starts at the top of the food chain and tumbles all the way down to the bottom. And the classic example is what happened in the Yellowstone National Park in the United States when wolves were reintroduced in 1995. Now, we all know that wolves kill various species of animals, but perhaps we're slightly less aware that they give life to many others. Before the wolves turned up, they'd been absent for 70 years, that the numbers of deer, because there was nothing to hunt them, had built up and built up in the Yellowstone Park, and despite efforts by humans to control them, they'd managed to reduce much of the vegetation there to almost nothing. They'd just grazed it away. But as soon as the wolves arrived, even though they were few in number, they started to have the most remarkable effects. First, of course, they killed some of the deer, but that wasn't the major thing. Much more significantly, they radically changed the behavior of the deer. The deer started avoiding certain parts of the park, the places where they could be trapped most easily, particularly the valleys and the gorges. And immediately those places started to regenerate. In some areas, the height of the trees quintupled in just 6 years. Bare valley sides quickly became forests of aspen and willow and cottonwood. And as soon as that happened, the birds started moving. The number of songbirds and migratory birds started to increase greatly. The number of beavers started to increase because beavers like to eat the trees. And beavers, like wolves, are ecosystem engineers. They create niches for other species. And the dams they built in the rivers provided habitats for otters and muskrats and ducks and fish and reptiles and amphibians. The wolves killed coyotes. And as a result of that, the number of rabbits and mice began to rise, which meant more hawks, more weasels, more foxes, more badgers. Ravens and bald eagles came down to feed on the carrion that the wolves had left. Bears fed on it too, and their population began to rise as well, partly also because there were more berries growing on the regenerating shrubs. And the bears reinforced the impact of the wolves by killing some of the calves of the deer. Here's where it gets really interesting. The wolves changed the behavior of the rivers. They began to meander less. There was less erosion. The channels narrowed. More pools formed. More riffle sections, all of which were great for wildlife habitats. the rivers changed in response to the wolves. And the reason was that the regenerating forests stabilized the banks so that they collapsed less often, so that the rivers became more fixed in their course. Similarly, by driving the deer out of some places and the vegetation recovering on the valley sides, there was less soil erosion because the vegetation stabilized that as well. So the wolves, small in number, transformed not just the ecosystem of the Yellowstone National Park, this huge area of land, but also its physical geography.
आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा ये कि फिर से हम श्लोक पर आ जाते हैं आत्मानं सृजामि। हमारे टीकाकार कहते हैं भगवान इस प्रकृति को इस प्रकार से बनाए हैं कि इस प्रकृति में भगवान ने ये सारी चीजें, जैसे हमको प्यास की समस्या रोज होती है, भूख की समस्या, अंधकार, हमारे प्राणों को हर समय जिलाए रखने की, तो साधारणतः आप देखोगे कि हमारे प्यास के लिए जल उपलब्ध है। इसको भी आत्मानं सृजामि में समझ में, उसके संदर्भ में समझना है हमको। भूख के लिए भोजन उपलब्ध है, अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य प्रकाश, और हमारे प्राणों को जिलाए रखने के लिए जो प्राण वायु जिसको कहते हैं। तो ये केवल कुछ उदाहरण हमने लिए हैं जिसमें भगवान बोल रहे हैं कि धर्म अधर्म इसके विषय में तो आत्मानं सृजामि भगवान का होता ही है, परंतु इतने नीचे स्तर पर भी, जहां पर हम हमारे निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए यदि आंखें खोलकर देखें तो भगवान का आत्मानं सृजामि ये कार्य चल रहा है। हर एक योनि में, इस पूरी सृष्टि के कोने कोने में, सब जगह पर आत्मानं सृजामि भगवान का ये वाक्य सिद्ध हो रहा है, यदि हम उस दृष्टिकोण से इस पूरी सृष्टि को देखें तो। अब चार प्रकार के प्रयोजन ये भी वर्णन है महाभारत में, जहां यदि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अब ये मत समझिए कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो जातिवाद है उसके संदर्भ में बताया गया है, नहीं। जो अपने गुण और कर्म से उस प्रकार के स्वधर्म में स्थित होते हैं उनके विषय में भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान गीता में इन चारों के विषय में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। तो आज के श्लोक में जो आत्मानं सृजामि है वो भी उसी के संदर्भ में है। भगवान कहते हैं कि मेरी सृष्टि से ये गुण कर्म का विभाजन हुआ है। तो ब्राह्मण जो है उनका प्रयोजन है अज्ञान को दूर करना, क्षत्रिय जो हैं वो असुरक्षा को दूर करते हैं, वैश्य जो है वो अभाव को, शूद्र जो है वो आलस्य को। द फोर ए, अज्ञान, असुरक्षा, अभाव और आलस्य। तो यदि वर्णाश्रम धर्म को भी हम देखें तो वर्णाश्रम धर्म भी आत्मानं सृजामि से समझ में आना है कि भगवान निज रूप से निर्माण करते हैं ये वर्णाश्रम धर्म को, हमारे अज्ञान को, असुरक्षा को, अभाव को और आलस्य को दूर करते हुए। अब धर्म के अंतिम चार प्रश्न, तो जो हमने हमारे सात सेशंस में, यदा यदा ही धर्मस्य के सात सेशंस में इतना सब कुछ देखा सुना, तो उसका निचोड़, निष्कर्ष अब ये अंतिम चार प्रश्नों में आपको प्राप्त होगा। तो चार प्रश्न क्या है, क्या करना है, किसके लिए करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो यदि आपको पिछले 6 सेशंस और आज का सेशन भी यदि भूल जाएं, आप याद ना रहें, तो 4 प्रश्न ये याद रखें, और ये 4 प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत के इस प्रसिद्ध श्लोक में है, जहां पर बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। मेरे साथ इस श्लोक को दोहराइए, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। तो ये जो 4 अंतिम प्रश्न हैं, इस श्लोक ने इन 4 प्रश्नों का उत्तर दिया। सवाई पुमसाम परो धर्मो, पुमसाम का अर्थ है मनुष्य। हम मनुष्यों के लिए क्या करना बताया गया है, हम मनुष्यों के लिए बताया गया है परो धर्म, सर्वोच्च धर्म का पालन करना है हमें। किसके लिए करना है, यतो भक्तिर अधोक्षजे। भगवान श्री कृष्ण का एक और नाम है अधोक्षज, वन हु इज बियॉन्ड अवर सेंसेस, अधोक्षज कृष्ण। तो किसके लिए है, अधोक्षज कृष्ण के लिए। कैसे करना है वो सर्वोच्च धर्म का पालन, अहैतुकी और अप्रतिहता। अहैतुकी का अर्थ है बिना किसी हेतु के, अनकंडीशनल, प्योर, निर्मल, स्वच्छ, वो है अहैतुकी। और अप्रतिहता का अर्थ है अनइंटरप्टेड, बिना प्रतिहत हुए, बिना रुकावट के, बिना हेतु के, बिना रुकावट के। ये है तरीका उस सर्वोच्च धर्म के पालन करने का। और कोई फिर अंतिम प्रश्न पूछेगा, क्यों करना है ये सब कुछ, तो संपूर्ण संतुष्टि ययात्मा सुप्रसिद्धति, अंतिम लाइन जो है श्लोक की, कि इसमें छिपा हुआ है आत्मा, उसकी संतुष्टि। क्योंकि आत्मा जब परमात्मा जो अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण है, उनके अहितु की बिना रुकावट अप्रतिहता सेवा में लगता है, जब उनको प्रसन्न करने के लिए धर्म का पालन करता है, वो पर धर्म का पालन करता है, तब जाकर वो भगवान को संतुष्ट करते हुए अपने आप को संपूर्ण रूप से संतुष्ट करता है। और ये निचोड़ है जो भी भगवान धर्म के विषय में कह रहे हैं, उसका एसेंस ये श्लोक है। इसलिए आइए हम फिर से ये महत्वपूर्ण श्लोक कहें, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। तो हम आशा करते हैं कि भगवान ने जो इस श्लोक में इतना गुह्य ज्ञान समा कर दिया, हमने हमारी ओर से जितने हमारे आचार्य उनका सब का संकलन करते हुए एक छोटा सा प्रयास किया, इन 7 सेशंस में ये श्लोक हम यदि समझ पाए हैं, उसको हम अपने जीवन में उतारें, यही भगवान का और हमारे गुरुवर्ग इनका एकमेव उद्देश्य है कि भगवान द्वारा दिए गए ऐसे सिद्धांतों को हम समझें और अपने जीवन में अपनाएं, और फिर सर्वोच्च धर्म का पालन करते हुए ययात्मा सुप्रसिद्धि, भगवान को संतुष्ट करते हुए हम अपना जीवन संपूर्ण करते हुए संतुष्ट बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अब खैर, अगले बुधवार को हमारा नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव रहेगा। 13 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी है, और हमारे बंबई से चैतन्य चरण प्रभु आ रहे हैं, और 4 दिन की नरसिंह कथा होगी। आने वाले रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास से प्रारंभ होते हुए संडे फीस्ट रविवार का, वो भी नरसिंह कथा, फिर मंडे इवनिंग नरसिंह कथा, और 13 तारीख को मंगलवार को नरसिंह चतुर्दशी है। तो सुबह और शाम, और आपको सूचित करना चाहेंगे कि इस वर्ष हम बहुत ही विशेष नरसिंह भगवान के अर्च विग्रह बनवा कर लाए हैं दक्षिण भारत से, और वो उनका दर्शन ऐसा है कि जिसको हम कहते हैं ब्रेथ टेकिंग दर्शन, ऐसा दर्शन होगा। तो इसलिए इस बार की नरसिंह चतुर्दशी बहुत स्पेशल है, तो आप लोग सब भारी मात्रा में आइए और अपने बाकी मित्रों को रिश्तेदारों को बुलाइए इस बार के नरसिंह चतुर्दशी उत्सव में। और फिर अगले बुधवार को भी नरसिंह कथा होगी, चैतन्य चरण प्रभु बुधवार तक है यहाँ पर, तो रविवार से लेकर बुधवार तक नरसिंह चतुर्दशी का महामहोत्सव मनाया जाएगा। बोलो श्री नरसिंह भगवान की
हरे कृष्णा। तो जैसे प्रभु जी ने अभी बताया, आने वाले रविवार सुबह से नरसिंह महोत्सव चालू